तारापरी और अमन एक जंगल में कुछ आदिवासियों के बीच फंस गए थे। वहां एक बूढ़े बाबा के द्वारा उन्हें ये पता चला कि पिछले जन्म में वे लोग वहां आ चुके थे। ना केवल वहां आ चुके थे बल्कि अपनी दो खूबसूरत मूर्तियां भी बना चुके थे। परंतु तारापरी और अमन उस बूढ़े बाबा की बातों पर यकीन नहीं करते और वहां से सीधा उन आदिवासियों के कबीले में चले जाते हैं। उस कबीले में एक बच्चे को भूख से बेहोश होते देख वे दोनों उन कबीले वालों की मदद करने का फैसला लेते हैं। तभी अमन के दिमाग में एक तरकीब आती है। अमन अपने असली रूप में आए बिना उनकी मदद नहीं कर सकता था, इसलिए उसे तारापरी को कहीं ना कहीं भेजना था। और तारापरी भी ऐसा ही सोच रही थी। वो अभी दोनों अपनी अपनी सोच में गुम थे कि तभी वो बूढ़ा बाबा एक बार फिर वहां आ गया। उन्हें देखते ही सब कबीले वाले उनके पैरों में गिर पड़े। तब उस बाबा ने उस कबीले में से दो आदमी चुने और बाकी सब लोगों को अंदर बंद होने को कहा और आदेश दिया कि कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। सब लोग उस बूढ़े बाबा पर अंधा विश्वास करते थे, सो जैसा उस बूढ़े बाबा ने कहा सब लोगों ने वैसा ही किया। तभी उस बूढ़े बाबा ने अमन से कहा, बेटा मैं जानता हूँ तुम इन गरीबों की मदद करना चाहते हो और उनकी मदद करने के लिए तुम्हें अपने असली रूप में आना होगा, जो है एक खूंखार विशालकाय जिन का। बूढ़े बाबा के मुंह से अपनी सच्चाई सुनकर अमन चौंक गया और बोला, आपको कैसे पता चला मेरा सच, मैं कौन हूँ? बूढ़े बाबा मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा आप कौन हैं कौन नहीं मैं अच्छे से जानता हूँ, फिलहाल ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। आप एक काम करें, इन दो लोगों में से एक आदमी को अपने साथ ले जाएं और आप जिस भी चीज़ से इन लोगों की मदद करना चाहते हैं वो करें। ये लोग वाकई बहुत परेशान हैं और तुम इनके लिए एक फरिश्ता बनकर आए हो। अमन के मन में ढेरों सवाल पैदा हो चुके थे, लेकिन अपने सवालों के जवाब तो वो बाद में भी ढूंढ सकता था। अभी उन कबीले वालों की मदद करना ज्यादा जरूरी था। अमन उस बूढ़े बाबा के कहे अनुसार एक आदमी को जंगल में ले गया और अपने असली रूप में आकर उसने उस आदमी को एक बड़ा सा एक मग टाइप का कुछ दिया जिसके अंदर थोड़ा सा पानी था। उस आदमी ने पूछा, मालिक ये क्या है, ये तो बहुत थोड़ा सा पानी है, भला इससे कैसे सब कबीले वालों की प्यास बुझ सकती है? तब अमन ने उसे प्रयोग करने का रास्ता बताया और इंसानी रूप में आ गया। वहीं दूसरी ओर वो बूढ़ा बाबा तारापरी के पास गया और बोला, बेटी मैं जानती हूँ तुम इन गरीबों की मदद करना चाहती हो। तारापरी भी हैरानी से उस बाबा की ओर देखने लगी और अमन की ही तरह उसके मन में भी ढेरों सवाल पैदा हो चुके थे। तब बूढ़े बाबा ने वो दूसरा आदमी तारापरी के साथ भेजा और तारापरी बिना सवाल किए उस आदमी के साथ गई और अपने असली रूप में आ गई। वहां जाकर उसने अपनी छड़ी घुमाई और एक छोटी सी जमीन पर एक बीज बो दिया जिससे हमेशा के लिए उस कबीले के लोगों की भूख की समस्या खत्म हो जाएगी। ये एक जादुई जमीन थी जिस पर तारापरी अनाज के बीज उगा दिए थे जो कभी भी खत्म नहीं होंगे। बस केवल एक बात का ध्यान रखना था कि जो कोई भी लालच से उस जमीन से खेती काटेगा तो वो जमीन अपने आप कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएगी और जब कोई निस्वार्थ भाव से उस जमीन से गेहूं लेगा वो ऐसे ही बनी रहेगी। दूसरी ओर अमन ने जो उस आदमी को एक जग टाइप का दिया था जिसमें थोड़ा सा पानी था, अमन ने एक जादुई तालाब की आकृति बनाई और उस जग के पानी को उस तालाब में डाल दिया और देखते ही देखते पूरा तालाब पानी से भर उठा। अब उस कबीले के लोग कभी भी प्यासे नहीं रहेंगे। दोनों ने अपने अपने जादू से उनकी परेशानी हमेशा के लिए दूर कर दी थी। तारापरी ने भूख की परेशानी खत्म कर दी थी तो वहीं अमन ने पानी की परेशानी खत्म कर दी थी और दोनों ने अलग अलग उस बाबा को सारी बात समझा दी थी। कुछ देर बाद वे दोनों वहां आ गए और एक दूसरे को देखने लगे। ना ही अमन को ये पता चला कि इन लोगों की भूख की समस्या तारापरी ने खत्म की है और ना ही तारापरी को ये पता चला कि इस कबीले के लोगों की पानी की समस्या अमन ने खत्म की है। दोनों के चेहरों पर एक सुकून सा उभर आया था और वे लोग बूढ़े बाबा से विदा लेकर उस जंगल से निकल गए। उन लोगों के जाने के बाद उस बूढ़े बाबा ने सब लोगों को बुलाया और पानी का तालाब और गेहूं की फसल दिखाकर कहा, दो फरिश्ते तुम लोगों को जीवन निर्वाह करने का रास्ता दिखाकर गए हैं, अब ये तुम लोगों के हाथों में है कि तुम लोग कैसे और कब तक इन चीजों का इस्तेमाल करते हो। और एक और बात याद रखना, जिस भी इंसान ने बदनीयती से वो जादुई पानी पिया या जादुई फसल काटी तो ये सब उसी पल गायब हो जाएगा, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना तुम लोग। ऐसा कहकर वो बाबा भी वहां से चले गए। वो कबीले वाले खुशी से झूम उठे क्योंकि 90% उनकी समस्या खत्म हो चुकी थी। अब उन्हें चोरी चकारी भी करने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी ओर अमन और तारापरी अपनी गाड़ी के पास पहुंच चुके थे और वे दोनों ये देखकर हैरान रह गए कि उनकी गाड़ी का पंक्चर अपने आप ही ठीक हो चुका था। उन दोनों ने सोचा, शायद इन कबीले वालों ने ठीक किया होगा, और वे दोनों गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गए। अमन की गाड़ी कबीले वालों ने ठीक नहीं की थी बल्कि एक जादुई साया हर वक्त उनके साथ था जिसने पहले उनकी गाड़ी खराब भी की ताकि वे दोनों उस कबीले में जाएं और वहां के लोगों की परेशानी दूर करें, और गाड़ी ठीक भी कर दी ताकि वे लोग आगे के सफर पर निकल जाएं। आखिर था कौन ये जादुई साया और क्या चाहता था, इसका जवाब तो हमें आगे होने वाली घटनाओं से ही मिलेगा। अमन और तारापरी गाड़ी में एक साथ बैठे हुए थे। अजीब सी खामोशी थी उन दोनों में। तारापरी को रह रहकर अमन के साथ किया गया किस याद आ रहा था जिससे उसके गाल शर्म के मारे लाल हो चुके थे। वहीं अमन का भी कुछ ऐसा ही हाल था, वो तारापरी से नजर तक नहीं मिला पा रहा था।
वो तारापरी पूरी रात से माली काका के घर नहीं गई थी, जिससे वो पूरी रात परेशान थे। और दो बार वो तारापरी के ऑफिस भी हो आए थे, लेकिन तारापरी का कहीं पता नहीं चला था। अब अमन तारापरी को लेकर माली काका के घर पहुंच चुका था। जैसे ही तारापरी गाड़ी से उतरी, वो हैरान रह गई। माली काका के घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। इतनी सारी भीड़ देखकर अमन भी अपनी गाड़ी से नीचे उतर गया और आगे जाकर देखने लगा कि यहाँ क्या हो रहा था। तारापरी जल्दी से आगे गई तो उसने देखा माली काका की बड़ी और छोटी बहू दोनों बैठकर बुरी तरह से एक दूसरे से झगड़ रही थीं, और उनके पास में ही माली काका के बेटे और पोते पोती खड़े उन दोनों का झगड़ा देख रहे थे। लेकिन माली काका कहीं नजर नहीं आए। माली काका को ना पाकर तारापरी परेशान हो गई और उसकी बड़ी बहू से पूछने लगी कि काका कहाँ है, लेकिन वो जवाब देने के बजाय उल्टा तारापरी को घूर कर देखने लगी। तभी उसका बड़ा बेटा आगे आया और बोला, वो कल रात से आपको शहर भर में ढूंढ रहे थे, लेकिन आपका कहीं कुछ पता नहीं चल पाया था, जिसकी वजह से वो चक्कर खाकर गिर पड़े, तो हम लोग उन्हें मरहम पट्टी कराकर घर ले आए थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। तारापरी ये सब सुनकर परेशान हो गई और जल्दी से भागकर अंदर चली गई, और उसने देखा माली काका एक बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन उनकी टांगों में प्लास्टर लगा हुआ था। माली काका तारापरी को देखकर खुश हो गए और बोलने लगे, बेटा आप कहाँ चली गई थी, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था। तभी अमन भी माली काका के कमरे में आ गए और माली काका अमन को देखकर चौंक गए।
तब तारापरी ने इशारे से माली काका को बता दिया कि अमन कौन है, और वे लोग अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी माली काका की दोनों बहू वहां आ गईं। वे लोग माली काका को लेकर ही झगड़ रही थी, क्योंकि उनकी टांग में चोटें आई थी, जिसकी वजह से वे लाचार से हो गए थे। तो दोनों बहुओं में इस बात पर बहस छिड़ गई कि काका की देखभाल कौन करेगा। तभी एक बहू तारापरी पर तंस करते हुए बोली, बाबूजी मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप चाहते हैं हम लोग आपकी देखभाल करें, तो आपको इस लड़की को यहाँ से निकालना होगा। आपने नहीं देखा, जवान लड़की रात रात भर घर से बाहर रहती है, और इसकी हिम्मत तो देखो, एक जवान लड़के को अपने साथ भी ले आई, ना जाने कहाँ अपना मुंह काला करके आई होगी। उसका इशारा अमन सिंह राठौर की ओर था। उस औरत की बात सुनकर अमन का पारा हाई हो गया था और वो गुस्से से उस औरत को कुछ कहना चाहता था, लेकिन तारापरी ने उसे रोक दिया और बोली, देखिए मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप लोगों के घर में कुछ भी परेशानी आए। तारापरी ने अमन को वहां से जाने को कहा और बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की। तारापरी की बात सुनकर अमन कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। तब तारापरी माली काका की बहू से बोली, वैसे तो मैं माली काका को अपने साथ लेकर जा सकती हूँ और उनका ध्यान रख सकती हूँ, लेकिन इस उम्र में मैं उन्हें उनके पोते पोतियों से अलग नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि काका अपने पोते पोतियों से कितना प्यार करते हैं, और अगर आप यही चाहती हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, तो मैं चली जाती हूँ। माली काका कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, वे मजबूर थे अपने बेटे बहू के आगे, और तारापरी अब खुद वहां नहीं रहना चाहती थी। वो किसी न किसी बहाने से अमन के साथ ही रहना चाहती थी, ताकि जल्द से जल्द वो अपना मकसद पूरा कर सके। अब जैसा कि उसके पास वहां से निकलने का कारण था, तो वो उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से अपना एक बैग पैक किया और माली काका के पास आ गई। तब तक सब लोग वहां से जा चुके थे, माली काका अकेले बैठे थे। तारापरी ने कहा, काका अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, और आप परेशान मत होना, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द अपना मकसद पूरा करना है। आप चलो मेरे साथ, मुझे बाहर तक छोड़ दो। माली काका ने कहा, लेकिन मेरे पैर। तारापरी मुस्कुराई और उसने अपना एक हाथ काका के पैरों पर रख दिया।